ओम शांति। हम सब ज्ञानी आत्मा हैं। बाबा कहते हैं कि हम सब ज्ञानी और योगी तो आत्मा हैं, पर हम सब जानते हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, योग से क्या क्या होता है, परंतु ज्ञान कितना अहम है इसकी भी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हमारे चार विषय हैं, चार विषयों में से जो सबसे पहला विषय है वो है ज्ञान। और देखा गया है कि कई बार योग से भी ज्ञान भारी पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर योग काम नहीं करता है, वहां पर ज्ञान काम कर जाता है। और ज्ञान को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समझ कहते हैं। समझ हमारे जीवन में परिवर्तन भी लाता है और समझ हमारे जीवन को सरल भी बनाता है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमें हर कदम पर समझ मिलती रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोना कैसे उजग उठना, कैसे कर्म करना, कैसे कर्म व्यवहार में बड़ों से आना, कैसे व्यवहार में छोटों से आना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो समझ है, ज्ञान है, ये हमारे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और बाबा ने तो हमें बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया है, एक ऐसा ज्ञान जिससे अगर हम चाहें तो अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को सुख और शांति से भरपूर कर सकते हैं। आज संसार और समाज में जो नहीं है, जिसके पीछे ये पूरा संसार भाग रहा है, वो सब हम पा सकते हैं। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उस ज्ञान को हम समझ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ज्ञान कितना भी उत्तम हो परंतु यदि वो समझ में परिवर्तित ना हो तो वो ज्ञान हमारे लिए सार्थक नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, चाहे वो भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही क्यों ना हो। तो ज्ञान को समझ में बदलना ये बहुत जरूरी है। और ज्ञान समझ में तब बदलता है, परिवर्तित होता है, जब हम उसका चिंतन करते हैं। किसी भी ज्ञान का जब बार बार चिंतन किया जाता है तो वो ज्ञान हमारे भीतर समाता है और वो धीरे धीरे समझ का रूप लेने लगता है। और वो समझ हमारे जीवन को, हमारी साधना को सरल बनाता है और हमें एक अच्छी ऊंचाई देता है। तो हम सबके अंदर ज्ञान के चिंतन की भी आदत होनी चाहिए। योग पर तो हम बहुत फोकस्ड रहते हैं, सेवाओं पर भी हमारा ध्यान रहता है, लेकिन चिंतन पर हमारा उतना ध्यान नहीं रहता है। ज्ञान के पक्ष को मजबूत करने पर हमारा ध्यान उतना नहीं रहता है। हम सब सुनते बहुत हैं, सुनने की आदत हमें बहुत है, पढ़ते भी बहुत हैं। आजकल बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलती है, हम सबकी रुचि रहती है उसमें, लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुन करके समझना पर्याप्त है, तभी आत्मा में परिवर्तन आता है। परिवर्तन एक सेकंड का खेल है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता से मनुष्य बनने में हम सबको कितना समय लगता है, देवता से मनुष्य यानी ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगा, 5000 वर्ष। लेकिन बाबा कहते हैं चढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, ये मुरलियों में सुना है ना आप सबने, गिरने में 5000 वर्ष और चढ़ने में 1 सेकेंड। कितने दिन से भट्टी कर रहे हैं आप लोग, कितने दिन हो गए भट्टी करके, कितने सेकंड हो गए ना, अभी तक तो चढ़े नहीं, सारे विकर्म जले नहीं, सारे गुण आए नहीं, सारे अवगुण छूटे नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो बदलने में तो एक सेकंड ही लगता है, आत्म परिवर्तन में एक सेकंड लगता है, लेकिन उसको समझने में बहुत समय लग जाता है। समझने में काफी समय लगता है, और वो समझ जो आती है वो चिंतन से आती है। इसलिए हम सबको ज्ञान के चिंतन का, आत्म चिंतन की ये आदत डालनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय रोज निकाल करके, शांत एकांत स्थान में बैठ करके थोड़ा समय भी ज्ञान का मंथन जरूर करना चाहिए। इससे हमारा आत्म परिवर्तन सहज होगा, तेज होगा, और ज्ञान की बातें, बाबा जो कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत उत्तम है पर समय पे भूल जाता है, जब परिस्थिति पार हो जाती है तब वो ज्ञान याद आता है, ऐसा नहीं होगा, समय पर ज्ञान याद आएगा। तो अभी हम एक ऐसी ही एक्टिविटी करेंगे ज्ञान के चिंतन का। हम आपको एक विषय देंगे, उस विषय पर आप सब चिंतन करेंगे, और चिंतन करके उसका सार निकालेंगे, और जो भी उसका ग्रुप लीडर होगा, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ तो ग्रुप बनाना संभव नहीं होगा, फिक्स चेयर्स हैं, अब संख्या भी ज्यादा है, तो आप लोग ऐसा करें कि सेल्फ लिखें, आप लोग खुद ही। हालांकि ये ग्रुप चिंतन बहुत अच्छा रहता है, जब कई लोग मिल करके आपस में डिस्कस करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, आपस में दो दो तीन तीन जो नजदीक हैं आपस में रूह रिहान करें, लेकिन बहुत स्लो वॉइस में, आवाज इतनी हो कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। तो जो आसपास में लोग हैं आपस में डिस्कस करके और उस पे लिखेंगे, और उसमें से कोई एक जो ग्रुप लीडर होगा उसमें से दो चार लोग को हम यहाँ बुलाएंगे, और आप आकर के सुनाएंगे कि आपने क्या सार निकाला। ये ज्ञान हमें दूसरों को भी तो सुनाना है ना, ज्ञान हमारे पास है लेकिन जब सुनाना होता है तो उसे व्यवस्थित रूप से सुनाना होता है। कहीं का कहीं सुनाएंगे तो सुनने वाले को मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये ज्ञान उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर वो बाबा के ज्ञान की तरफ आकर्षित भी नहीं होगा। तो सेवा का एक रूप वाचा सेवा भी तो है, तो वाचा सेवा भी हमको करनी है, उसके भी मार्क्स हैं, उसके लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। चिंतन से हमारा ज्ञान जो है क्रमबद्ध भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। अभी कोई आपको कह दे कि स्ट्रेस पर आपको एक घंटा भाषण देना है, कितने लोग दे पाएंगे, हाथ खड़ा करें, कितने लोग दे पाएंगे, दो चार लोगों ने हाथ खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के ऊपर नॉलेज आपको नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया, क्रम से सेट नहीं किया है। ये चिंतन हमारे ज्ञान को सिस्टमाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो हम सब चिंतन करेंगे, और आपके चिंतन का विषय है पुरुषार्थ से रिलेटेड विषय है। हम सब जानते हैं कि एक योगी का मन सदैव शांत होना चाहिए। जब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा हम कभी भी एक अच्छा योगी नहीं बन सकते। पर एक दूसरा सत्य ये भी है कि हमारा मन सदैव शांत नहीं रहता है। अब आपके चिंतन का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा मन सदैव शांत रहे, उसके लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। या इसको ऐसा कर देते हैं, मन की अशांति के कारण कौन कौन से हैं, इसको आप ऐसा कर ले कि मन की अशांति के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को अशांत करती हैं, हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं, हमें योगी नहीं बनने देती हैं। टॉपिक क्लियर है, हाथ खड़ा करें जिनको क्लियर है। मन की अशांति यानी एकाग्रता भंग होने के कौन कौन से कारण हैं, आपको एक एक पॉइंट निकालना है, उस पर चिंतन करना है, साथ साथ ये भी चिंतन करना है कि उस कारण का निवारण क्या है। जैसे परिस्थितियां हमारे मन को चंचल करती हैं, हमारी एकाग्रता को नष्ट करती हैं, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करें। बीती बातों का बहुत अधिक चिंतन करना, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं जो सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं, मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है, उसको समाप्त करने के लिए क्या करें। तो कारण और उसका निवारण दोनों का चिंतन साथ साथ करना है। क्लियर क्लियर है? कुछ डाउट है किसी के पास? ठीक, आप लोग चिंतन करें। आपके पास 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगा, फिर आप में से दो चार को हम बुलाएंगे, यहां आप अपना अनुभव सुनाएंगे। तो आप दो दो तीन तीन का ग्रुप अपनी सुविधा अनुसार बना लें, चार चार का, और आप लोग चिंतन करें। आप में से एक कोई ग्रुप लीडर बन जाए और वो नोट तैयार करे, नोट्स बनाए, और वो फिर आके सुनाएगा। माताएं भी ग्रुप बना लें, माताएं एकदम शांति से बैठी हैं, आप लोग भी चिंतन कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लिखना नहीं आता है, इतना लिखना तो सबको आता है। आप लोग भी, आगे भी सोफा पे जगह खाली है, आप लोग दो दो चार चार का ग्रुप बना लें और आप भी चिंतन करें। कुछ टीचर बहनें हों या कुमारियां हों तो उनको मदद करें, हर ग्रुप में एक एक कुमारी या टीचर बहन शामिल हो जाए, थोड़ी मादाओं की मदद करके ग्रुप बना दें और आप लोग भी जरूर चिंतन करें। किसका किसका पूरा हो गया? इतना जल्दी? इसमें तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, मन को परेशान करने वाली, मन में व्यर्थ पैदा उत्पन्न करने वाली बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए तो कई घंटे चाहिए। सुबह से शाम तक लिख, आप में से 5-6 जने को हम बुलाएंगे और आपको 2-3 मिनट में अपनी बात रखनी है। आपने निचोड़ रूप में, सार रूप में बात सुनानी है, क्या चिंतन किया है। तो ध्यान रखें 2-3 मिनट से ज्यादा ना लगे। सामने में माइक रखा हुआ है, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आप लोग सुना सकते हैं। कौन सुनाएगा पहले? आइए आ जाए, यहां माइक है सामने। इधर माइक रखा हुआ है।
आदरणीय मेरे भाइयों और बहनों और मंच पे आसीन हमारे अधिकारियों, जैसा कि आदेश हुआ है कि 2 मिनट बोलना है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि बाबा के प्रति निश्चय न होने से निश्चिंत नहीं होते। जहां भी बाबा के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं है वहां पर हमारा चिंता स्वाभाविक हो जाती है। दूसरा है तन की खराबी के कारण, जिसका तन खराब है उसका मन खराब है, उसका दिमाग अपना आप ही खराब रहेगा, बीमारी पे ही नजर रहेगी उसकी। तीसरा है धन की कमी के कारण, धन की कमी घर में आ रही है तो वो हर परेशानी को आती रहेगी। तीसरा है दूषित अन्न, हम कहीं से दूषित अन्न खा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वो ऐसा अन्न खा रहे हैं जो पाप की कमाई से आ रहा है, तो उसका प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। पांचवा है घर की समस्या, जैसे बंटवारा आदि आती है, भाइयों में बंटवारा आदि, तो काफी लालच में बहुत लड़ाइयां होती हैं। और अमृत वेला में योग न करना, तो जब अमृत वेला में योग नहीं करेगा तो उसका ध्यान ठीक नहीं रहेगा। निद्रा का अभाव, जो पूरी तरह से निद्रा नहीं लेंगे तो उनके कारण भी होता है। और अपने सहयोगियों के द्वारा निंदा व आलोचना, अगर अपने सहयोगी उनकी निंदा या आलोचना करते हैं तो मन पे उसका प्रभाव गलत पड़ता है। अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, घर परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए किसी की भी, तो भी संतुलन हमारा खराब होता है। और कई बार नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग, तो उनके अंदर भी हमारे अंदर आता है। तो इनके जो उपाय हैं, ध्यान करना, योग करना, सेवा और धारणा। जैसे बाबा के प्रति निश्चिंत जब तक नहीं हो गए, पूरा दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तो आप किसी भी कीमत पे निश्चिंत हो ही नहीं सकते। तन की जो खराबी है उसके लिए रोज आपको एक्सरसाइज जो बाबा बताते हैं और सुबह भी ध्यान उसमें करवाते हैं एक्सरसाइज तन के लिए, जब नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा। धन की कमी के लिए अगर प्रयास नहीं करेंगे तो बिना धन के कोई भी कार्य नहीं होता है, तो वो बहुत आवश्यक है। और दूसरी तन ऐसे लोगों के घर में अन्न खाओ ही नहीं जिन्हें पता चल जाए, वो आपको बुलाएं भी कहीं तो उसके वहां जाओ ही मत, ना जाओगे ना वो अन्न खाना पड़ेगा। और घर की समस्या ये सोचो कि ये कोई हमारे साथ ही नहीं हो रही है, बंटवारे आदि की जो समस्या आ रही है ये सबके साथ है। थोड़ा कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, कैसे भी उस समस्या को निपटाना है। करोड़ों पति हैं और लाखों पे लड़ाई चल रही है। गांव की भाषा में कहते हैं कि बीघों का हिसाब हो गया और गजों पे लड़ाई चल रही है। और मुरली रोज सुनेंगे हम तो उसमें बाबा ने ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हैं जो बड़ी बड़ी से बड़ी समस्या हमारी चुटकियों में दूर हो जाएगी। और ध्यान का रोज करना हमें अत्यंत आवश्यक है। जैसे पानी जब बिल्कुल रुक जाता है, शांत हो जाता है, तो नीचे का पड़ा हुआ सिक्का भी नजर आ जाता है। ऐसे ही जितना ज्यादा हमारे ध्यान में मन लगेगा, बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन बाबा अपना आप उसमें दे देते हैं। और अमृत वेला का मतलब है अमृत बरसता है, उस समय देवता आके यहां अमृत बरसाते हैं। जो अमृत वेला नहीं करता वो उसको अमृत मिलेगा ही नहीं, ये सबसे पहली वो है। और निद्रा जितनी लेनी है उतनी लेनी चाहिए, अगर वो निद्रा नहीं लेगा तो वो दिक्कत पड़ेगी। और अपने जो सहयोगियों के द्वारा निंदा और आलोचना है उसका यह है कि जितने भी महान से महान आदमी हुए हैं उनकी आलोचना ज्यादा से ज्यादा हुई है। जैसे आपने देखा होगा बाबा को कितनी समस्याओं का सामना करके और यहां तक पहुंचना पड़ा है, क्यों हर आदमी किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। और वो भी निंदा और आलोचना भी उसी की होती है जो कार्य करता है, जो कार्य नहीं करता घर बैठा उसकी कोई निंदा ही नहीं करेगा।
ठीक है भाई जी, बहुत सारी पॉइंट्स हो गई, बस अभी दूसरों को भी थोड़ा मौका।
धन्यवाद,
बहुत अच्छा सुनाया। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए, थोड़ा कम समय में सुनाए। और दूसरी चीज की हम सूक्ष्म पहलुओं को ज्यादा टच करें। स्वास्थ्य, जैसे भाई जी ने कहा स्वास्थ्य है, घरेलू समस्याएं ये सब तो है ही है, पर सूक्ष्म चीजें जो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं, तो हम सूक्ष्म पे थोड़ा ज्यादा चर्चा करें, सुनाए।
ओम शांति जी, मैं विनोद अग्रवाल मेरठ से। मनसा शांत रखने के कारण और निवारण बताने का क्या कहा गया है तो शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको। कारण और निवारण एक साथ ही बोलूंगा मैं। नंबर एक, हमारा बहुत ज्यादा मन अशांत रहता है, बीती खराब बातें याद करते रहने से मन अशांत रहता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है अपने माइंड को डस्टबिन मत बनाओ, बीती केवल अच्छी बातें याद रखो और पुरानी जो खराब बातें हैं उन्हें एकदम भूल जाओ, वो मैं करता भी हूं। दूसरा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। अगर आप सात्विक भोजन पर ध्यान देंगे और मेडिकेटेड पानी पिएंगे तो आपका मन शांत रहेगा। बहुत सारा जजमेंट डिसीजिव नहीं होना, जजमेंट डिसीजिव होने पर भी हमारा मन शांत रहता है। अगर हम घर की हर छोटी छोटी चीज में जजमेंट देंगे अपना तो जजमेंट फटीग हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ लिमिटेड चीजों में ही जजमेंट दें, आपका मन शांत रहेगा। किसी के लिए कुछ अच्छा करो उसे भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो उससे अच्छे की उम्मीद करते हैं और जब वो अच्छा नहीं करता तो आपका मन अशांत होता है। तो उसके लिए पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, पुरानी अपनी अच्छी की हुई भी भूल जाइए और जो कुछ भी कोई दूसरा कर रहा है उसको एजिटिव स्वीकार कीजिए। परिवार में एकमत न होने पर भी मन अशांत रहता है, यह भी विचार करना चाहिए कि हर आत्मा का अपना अलग अलग संस्कार है, ये निवारण है। और वो गलत कोई नहीं है, गलत सब सही है, मगर सबका तरीका अलग अलग है। तो वो अपने अपने संस्कार से बात करते हैं, दो भाई अलग हो सकते हैं, दो बहन अलग हो सकती हैं, बाप बेटे अलग अलग विचार के हो सकते हैं। मेहनत करने पर भी परिणाम ना मिलने पर भी मन अशांत होता है। विश्वास रखना चाहिए कि कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, आज मिलेगी या कल मिलेगी, ये जब मगर जो आपने काम किया उसका फल जरूर मिलेगा। अपनी चाहना के अनुसार मन कार्य, अपनी चाहना पूर्ण ना होने पर भी मन अशांत होता है। यदि हमारी इच्छा अनुसार निवारण, यदि हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो समझिए कि बाबा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और निश्चित मानिए, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब हमारी मन की इच्छा का नहीं होता तो बाद में पता चलता है कि बाबा की इच्छा ज्यादा बड़ी थी। कोई निरंतर दुख देता है तो भी मन परेशान होता है। अगर कोई आपको निरंतर दुख दे रहा है तो आपको उससे तरस खाना चाहिए। जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड हो तो उसे देख के कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा तरस आता है कि यार बेचारे के साथ क्या हो रहा है, हर समय परेशान रहता है। तो ऐसे ही आपको कोई निरंतर दुख रहा है, दे रहा है, तो उस पर तरस खाइए, उसको अच्छी वाइब्रेशन दीजिए तो आपका मन शांत हो जाएगा। किसी के प्रति गुस्सा करने पर भी मन परेशान होता है। अगर आपने गुस्सा, वैसे तो बना करते हैं, क्रोध होना ही नहीं चाहिए, ये भी हमारा विकार है, पर फिर भी अगर गुस्सा हो जाए तो जितनी जल्दी आप उससे माफी मांग लेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। जितनी जल्दी, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शाम भी ना होने दें, और कहते हैं भाई बच्चे से भी कहना पड़ जाए, बेटा सॉरी गलती से निकल गया, मन दूसरी तरफ था, तो आपका मन देखिए कितनी तेजी से शांत होता
जी
है।
भाई जी, ठीक है।
सभी भाई बहनों को ओम शांति। मेरा पहला प्रश्न है, देहबान में आना यह अशांति है, तो हमें देहबान में नहीं आना, हमें देही अभिमान में रहना है। और दूसरा है, हमारी इच्छा पूर्ति ना होना, तो हमें कोई इच्छा नहीं रखनी, हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तीसरा है, दुख कभी भी हमें लेना नहीं है, क्योंकि दुख ले लेते हैं तो हम परेशान होते हैं, इसलिए हमें कभी दुख लेना नहीं है, दुख देना नहीं है। साधनों के अधीन होना, तो हमें साधनों के अधीन नहीं होना है, क्योंकि साधना आज है कल नहीं है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं है। मोह नहीं होना, मोह में होते हैं तो हम परेशान होते हैं, मोह नहीं करना, हमें स्नेह करना है अपने बच्चों से, मोह में नहीं फंसना। मैंपन, जैसे मैंपन में आता है कि मैंने किया, तो मैंपन आना भी हमें दुख देता है कि इसका फिर हमें सम्मान नहीं मिला, तो फिर हमें वो दुख होता है। तो सम्मान की इच्छा ना रखें, किसी की बातों के इच्छा नहीं रखें, और किसी की अशांति में नहीं होना। तामसिक भोजन भी हमारे दुख देता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसी वाणी, और हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। पिछले जन्मों का हिसाब किताब, जैसे पिछले जन्मों की आत्माओं का हिसाब किताब होता है, उससे भी हमें दुख मिलता है, क्योंकि उन आत्माओं को पता नहीं है, तो इसे उन आत्माओं को माफ दे कर दो और माफी ले लो।
लौकिक नाम रितेश, इतनी बड़ी स्टेज पे आज बाबा ने बोलने का मौका दिया, टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे आप 4 घंटे भी अगर बोल लो तो मेरे को लगता है बहुत कम है। मन की शांति के कारण कल बाबा ने कहा, पास्ट में अगर आप जी रहे हो तो मन अशांत रहेगा, फ्यूचर में जी रहे हो, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आप कल्पना स्वप्नों में जी रहे हो, दुखी रहोगे, वर्तमान में जियो जो कि आपके हाथ में है, और जब आप वर्तमान में जियोगे तो सुखी रहोगे। एक दृष्टांत देता हूं, बाबा का 12 साल का बच्चा हूं मैं, भक्ति और भजन काफी गाए मैंने 32 साल तक। महाभारत में देखा कि द्रौपदी ने कहा कि कान्हा तू वैसे मुझे बहन कान्हा कि वैसे तूने मेरे को कहा है कि तू मेरी बहन है, और भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण हुआ और तू देखता रहा। कह रही ठाकुर जी ने कहा कि बहना इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है जितना बड़ा तूने मेरे आज इल्जाम लगा दिया। जब वस्त्र हरण हो रहा था, सारी भीम आया, जितने तेरे पांचों भाई हैं, किसी ने भी मुझे उस वक्त याद नहीं किया। मैं देखता रहा, मेरे को अब आवाज पड़ेगी, लेकिन मेरे को किसी ने याद नहीं किया। जब हम ऊपर से कहते हैं कि बाबा मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा साथी है, लेकिन उसको धारण करना और फेस पे उसको साथ लेके चलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आपके साथ कोई घटना होती है तब आपका पता लगता है कि वो आपने कितना धारण करा। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि ज्यादा तो नहीं, अगर 100 में से 100 बाबा के बच्चे निकाल लूं तो 2 नौका पे सवार चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चल रही है भक्ति, एक तरफ चल रही है ज्ञान, और जो 2 नौका का होगा वो डूबेगा। 2500 वर्ष हो गए हमें भक्ति करते और ग्राहकी हर दुकान
पर। विषय पे ही फोकस्ड होके बोले, आप सिर्फ पॉइंट्स बताएं, ये मतलब एलैबोरेशन है, ये तो खैर इसकी चर्चा होती रहेगी, समय कम है, तो सिर्फ वो बातें बताएं जो हमारे मन को उद्वेलित करती हैं, पॉइंट्स केवल।
इसका सारा सलूशन यही है कि बाबा को एक अपना साथी बना लो और हर वक्त कि बाबा मेरे साथ है और मेरे को उसकी और किसी की कोई जरूरत ही नहीं है।
जी जी।
मुझ आत्मा का नाम कमलेश शर्मा है, मैं दिल्ली प्लास्टर सेंटर ग्रुप से हूँ। मैं जो बाबा ने शक्तियाँ दी हैं 8, उसमें है विस्तार को सार में बदलना, तो उसी सार में ही मैं बोलूंगी। एक साइड पॉइंट है अशांति के, एक साइड है शांति के। परचिंतन स्वचिंतन, परमत श्रीमत, परदर्शन स्वदर्शन, व्यक्ति का प्रभाव प्रभाव से मुक्त, बीती बातों का चिंतन बार बार करना, फुल स्टॉप लगाना, अभिमान सम्मान, देव देधारी, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, अवगुणों को देखना, विशेषता का चश्मा पहनना, विचारों का तालमेल, अनेकता में एकता, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, इच्छा मात्रम अविद्या, अरवेलापन आलस्य, देही अभिमानी, अपवित्रता पवित्रता, इम्बैलेंस बैलेंस, बैलेंस याद और सेवा का बैलेंस, समनिकता गंभीरता का बैलेंस, प्रशंसित प्रशंसित, कोई क्वेश्चन ना उठाओ, खाली खुश रहो, योग की कमी योग का प्रयोग, दिल चिकित्सक उमंग उत्साह, परेशान शान में रहना, अपसेट सीट पर सेट, कमजोर शक्तिशाली, गुणों की कमी गुणों में प्रखरता, व्यर्थ को समर्थ में बदलना, विषमृति स्मृति। ओम शांति।
ओम शांति। मैं अंजू करनाल ग्रुप से हूँ, और पर चिंतन व परदर्शन से मन भटकता है, मन सभी संबंधों में बंधा हुआ है, इसलिए बार बार संबंधों की तरफ भटकता है और मन अशांत हो जाता है, इसलिए बाबा की याद में रहना चाहिए। इसका निवारण यह है कि फुल स्टॉप लगा दो, जिस टाइम भी मन में कोई आए बात और कोई दुनियावी बात आए तो उसी टाइम फुल स्टॉप लगा लो और बुद्धि को बाबा के पास ले जाओ। स्वमान की सीट पर बैठ जाना है, संशय बुद्धि भी भटकाती है, इसके लिए निश्चय बुद्धि रहना है, आंख बचाकर रखनी है। बाबा ने कहा है कि जैसे हम भौतिक सुखों पे और देह साधनों पे ज्यादा अपना मन लगा लेते हैं तो वो भी मन का अशांत कर देती है, भौतिक साधनों का पीछा करना मन को अशांत करता है, देह साधन को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है ना कि मनोरंजन के लिए, पुराने स्वभाव संस्कार मन को अशांत करते हैं, वाणी की अशुद्धि मन को अशांत करती है, मन वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखना है उसके लिए, मन चलायमान होने के कारण पल पल अपना स्थान बदलता रहता है और मन अशांत होता रहता है, उसके लिए मन को बाबा में लगाना है। ओम शांति।
ओम शांति। मैं सरोज चावला करनाल से। अशांति के कारण और निवारण, पहला है पास्ट फ्यूचर का डर, तो ऐसा पास्ट इज ओवर एंड फ्यूचर जो होगा अच्छा होगा बाबा के लिए। कंपैरिजन मन को अशांत करता है, लेकिन हर आत्मा विशेष है बाबा की मुरली कहती है, तो कंपैरिजन आउट। व्यर्थ चलता है विचारों की हलचल, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, चार्ट लिखेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, पूरा शेड्यूल बनाएंगे, व्यर्थ समाप्त। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, मन अशांत होता है। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करने आई है। अपेक्षाएं खत्म। रिलेशंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, मन अशांत, लेकिन अगर सर संबंध बाबा से जोड़ दें तो हर संबंध का सुख बाबा से मिलेगा, रिलेशन से अपेक्षाएं ही नहीं रहेंगी। अलबेलापन, अमृत वेला पूरा नहीं हुआ, समय पर नहीं उठी, मन अशांत, लेकिन उस समय क्या हमें जो है बाबा से जो है बाबा से ही हर सुख जो है हमें प्राप्त करना है, तो अमृत वेला पूरा ना हो, मन के गिल्ट को दूर करना है, बाबा से जोड़ना है। जल्दबाजी करते हैं तो मन अशांत, जल्द मैं और मेरे पन के भान को छोड़ना है, करण करावन हार बाबा है, ये चिंतन करेंगे तो काम सहज भी होगा और गलती भी नहीं होगी। परिस्थितियां अशांत कर देती हैं, बाबा को हर परिस्थिति में साथ रखें। बाबा कहते मैं बैठा हूं, मेरी जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, तो हर परिस्थिति का निवारण। अलबेलापन, आलस्य से मन जो है कई बार मन बहुत परेशान हो जाता है कि फिर बाबा की मुरली से याद आता है कि ये भी एक विकार है और मन को समझाना है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मन की मालिक हूँ, तो इससे ये जो अलबेलापन और आलस्य है वो खत्म हो जाएगा। नाम मान शान के पीछे मन अशांत, बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी बनो, जितना गुप्त पुरुषार्थी बनोगे उतना ऊंच पद पाओगे, यहाँ मान शान लोगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। ओम शांति।
कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है ना, देखिए ये यही सब चीजों पर हमको पुरुषार्थ करना, जैसे बहन ने कहा नाम मान शान, या इस तरह की सूक्ष्म बातों पर हमको अच्छा चिंतन करना। मोटी मोटी बातों पर तो हमारा ध्यान रहता है, तो ये चिंतन का ये एक फायदा है। समय हो रहा है इसलिए एक लास्ट और एक जने सुना ले।
ओम शांति। मुझ आत्मा का नाम वीणा सोनी है, मैं इंदौर जोन से आई हूँ। परिस्थितियों को कैसे समाप्त करें? बाबा की याद से पावरफुल संकल्प लाए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छे अच्छे अनुभवों को याद करें तो परिस्थिति समाप्त होती है। शिव बाबा की याद में बैठकर अपने अच्छे संकल्पों को चार्ज करें तो परिस्थितियां ऑटोमेटिक समाप्त होती है। अपने ही नेगेटिव संकल्पों से सामने वाली आत्मा के अवगुण देखने की आदत से भी एकाग्रता भंग होती है। बाबा की नजर से नहीं देखते, मैं आत्मा हूँ यह भी भूल जाते हैं। देह भान में आने के कारण भी श्रीमत भूलकर मन मत चलाते हैं, इसलिए परिस्थितियों में परेशान होते हैं। ओम शांति।
चलिए लास्ट आप सुना लीजिए क्योंकि समय एक्सीड कर रहा है।
ओम शांति। विषय, मन सदैव शांत रहे, कारण और निवारण। बीती बातों का चिंतन करना, मन की को समझना। हमारे पास जैसे हम अपना जीवन कहते हैं, जो हमारा अब तक पास्ट है, गुजरा हुआ है, वो हमारे हाथ में, वो हमारी स्मृति में, हमारे ख्यालों में, वो हमारी पूंजी है। मन की जो स्थिति है, मन हमेशा यादों में, स्मृति की क्षमता में, और उसकी जो मुख्य क्षमता है मन की, वो चिंतन मनन करना है। जीवन की घटनाओं की याद उसमें भरी पड़ी है, मन का स्वभाव है चिंतन और मनन में लगे रहना। और जब हमारे पास खाली समय होता है तो यह मन उन घटनाओं में विचरण करने लगता है और हम उन यादों को अपनी पूंजी समझ उसमें व्यस्त हो जाते हैं। यही मन की क्रिया हमारी आदत बनने लगती है तथा जैसे उम्र बढ़ती है पूंजी भी बढ़ती चली जाती है और ये हमारा संस्कार बन जाती है। और ये संस्कार पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम थक हार कर निढाल नहीं हो जाते। ये हमारी आत्म की शक्ति को छीन कर और हम उसको समझने में भी अपर्याप्त हो जाते हैं। और ऐसा लगता है चिंतन मनन करके जब थक हार जाते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, अब हम ने बस निढाल हो गए। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, उनको पार करने के लिए साधन और के अलावा युक्ति की आवश्यकता होती है। वह युक्ति मन द्वारा हमारी समझ, शिक्षा व पुराने अनुभव के आधार पर कार्य करती है। समस्या का समाधान पश्चात भी हम उसी विषय वस्तु पर सोचते रहते हैं कि यदि ऐसा और कर लेते या ऐसा और कर लेते तो और अच्छा होता, और यही कारण यही नए नए सुझाव देने लगता है और व्यर्थ का जो एक संचालन हमारा मन करने लगता उसको उसकी आदत पड़ जाती है। इस प्रकार मन का जाल हमें चारों ओर से घेर लेता है। मन अपने संस्कारों में आ जाता है फिर से और इस अवस्था में हम आत्मस्वाभिमान हो ही नहीं सकते। वैदेही अवस्था को भी प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता है। निवारण, अपने अनादि स्वरूप को याद करें। उसके निवारण के लिए पहले अगर हो सके तो हम अपना जो हमारा अनादि स्वरूप है अगर हमें याद आता या हम विजुअलाइज कर सकते हैं तो हमारा जो अनादि स्वरूप है उसको विजुअलाइज करें। दूसरा, अपने पूर्व जन्म की जो पूर्व अतीत की यादें हैं, बचपन की यादें, जो यादें हमें प्रफुल्लित करती हैं, उमंग भरती हैं, बिना सोचे बिना समझे जो हमने कुछ किया, अबोध अवस्था में बचपन में जो खेले हैं वो कुछ याद हो, तो हम उस याद को और उस अवस्था को अपनी को कंपेयर करें कि आज मैं क्या हूं और तब क्या था। तो मैं भी वही जो पहले था और अब भी वही, उम्र बढ़ गई है, मन और बुद्धि और चिंतन और शरीर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो फिर हमें लगेगा मैं कहां से कहां तक आ गया।
ठीक है ब्राता जी, समय काफी हो रहा है तो बस अभी यहीं पूरा करते हैं। नहीं बस अभी ज्यादा समय हो गया, अभी तो बहुत लोग हैं, सब सुनाने लगेंगे तो काफी लेट हो जाएगा।
हम याद रखें मैं आत्मा हूँ, आत्मा के तीन स्वरूप हैं मन बुद्धि संस्कार। तो मैंने बताया कि मन बुद्धि और संस्कार, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, बुद्धि के द्वारा, और संस्कार को हम छोड़ सकते हैं। मन द्वारा व्यर्थ चलता है, वह बुद्धि द्वारा उसको दिशा दी जाती है और निर्णय लिया जाता है, वह वही आदत संस्कार बन जाती है।
ये तो सारा माइंड मैकेनिज्म है, हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है, विषय हमारा कुछ और है, तो कृपया बैठ जाए।
थैंक यू सर।
ओम शांति। शरीर का नाम ईश्वर भाई। मन को चंचल करने वाला आजकल का जो चला हुआ है वो है सबसे बड़ा अश्लील साहित्य पढ़ना, इंटरनेट मोबाइल को यूज करना। अगर हम इंटरनेट मोबाइल को यूज करेंगे तो बाबा से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। इसलिए अपने आप को बिंदी और बाबा को बिंदी और मोबाइल को बिंदी लगाएंगे तो हमारा सारा सारा जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति।
ठीक है, तो नहीं बस नहीं नहीं अभी नहीं प्लीज। तो अभी ये सेशन कैसा रहा, ठीक लगा? ये सेशन कराने का भाव ये था, देखिए ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, या अभी भी आप लोगों ने जो चिंतन किया, मैं एक साक्षी होकर के अगर ये कहूं, आप सबको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप लोगों का अभी भी बहुत क्रूड है, इसमें से कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी आ रही हैं। चिंतन का मतलब कि जो बातें उसमें से निकले वो मेरे पुरुषार्थ में काम आए, मेरे पुरुषार्थ को बढ़ाए, वो चीज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जाए। आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, वो अभी भी पूरी तरह से क्रमबद्ध नहीं है, कैटेगराइज्ड नहीं है, बहुत स्प्लिट है वो, तो उसको ये चिंतन हमारे ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है। और इसको कराने का लक्ष्य यही है कि ये जो कुछ आपने किया वो एक लेसन है, इसको यहां ही छोड़ के नहीं जाना है। आप जब अपने सेंटर्स पर, सेवा केंद्रों पर वापस जाएं तो वहां एक ग्रुप बनाएं। यहां तो वो फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो हम 10-10 12-12 का ग्रुप बनाते हैं, बैठा करके कराते हैं, उसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ज्ञान एक ही है, मुरली एक ही है, लेकिन उसमें से हर व्यक्ति अपनी अपनी आत्मिक क्षमता के अनुसार बातों को ग्रहण करता है। तो जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बहुत सारी नई बातें हमको मिलती हैं, और आपको भी जरूर मिली होंगी, क्योंकि हर ग्रुप ने अलग अलग पॉइंट सुनाया है, कुछ सिमिलर था कुछ अलग था, तो नवीनता मिलती है ग्रुप डिस्कशन में। तो आप लोग जब भी अपने सेंटर पर वापस जाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि हम एक ग्रुप बनाएं, और संडे के दिन या जब भी हॉलीडेज हो, हफ्ता में कम से कम सप्ताह में एक दिन हम लोग बैठें और बैठ करके ज्ञान की लेन देन करें, और अलग अलग विषय लें। जैसे ये मन के ऊपर था, वैसे हम जैसे हमारे संस्कार परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं, कौन कौन सी चीजें बाधक हैं, मन की चंचलता, सेवा का क्या महत्व है, सेवा हमें क्या कुछ दे सकता है, दुआओं का बल ये हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट, अलग अलग विषय ले उस पर चिंतन करें, तो ये आपके लिए एक पूंजी भी हो जाएगी जो आप दूसरों को सुना सकते हैं, और हमारे पुरुषार्थ में एक बल भी मिलेगा, क्लेरिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह से इसको और सूक्ष्मता में जाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली, जैसे पास्ट का चिंतन। अब पास्ट का चिंतन, जब भी मन में पास्ट चलता है, मन रुकने का नाम नहीं लेता है। हम कितनी भी कोशिश करें योग में बैठने की, कोई ऐसी दुखद घटना, जीवन में कोई ऐसा कड़वा अनुभव, जब भी वो याद आता है ना, योग भी नहीं लगता है। तो आप में से कईयों ने अपने अपने ढंग से सॉल्यूशन निकाला कि जब भी बीती बातें आए तो ऐसा सोचे ऐसा सोचे, लेकिन एक मेन चीज जो इसके जड़ को हिट करता है वो किसी ने नहीं सुनाया। मेरा लक्ष्य यही था कि आप इसके डीपनेस में जाएं। ऊपर ऊपर की बातें तो सब जानते हैं, पर एक पुरुषार्थी होने के नाते, एक तपस्वी होने के नाते, एक ज्ञानी तो आत्मा होने के नाते, सुपरफिशियली बातों पे चिंता नहीं करना है, गहराई में जाना है। ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो जन्मों से हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, वो मिट नहीं रही है, और जब तक वो मिटेंगे नहीं हम योगी बन नहीं पाएंगे। क्या करें उनको मिटाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो भी एक अच्छा, सबसे सहज तरीका अपने देह के भान को भूलना, अपने को आत्मा निश्चय करना। ये जितनी भी कड़वी मेमोरीज हैं वो किससे जुड़ी हैं, देह से जुड़ी है ना। पिछले जन्म में भाई थे, भाई ने हमारी साथ गलत किया, इस जन्म में पत्नी ने गलत किया, किसी जन्म में मित्रों ने गलत किया, देह से जुड़े हुए ये सारी घटनाएं हैं। देह को भूलिए, ये सारी जो संस्कारों में हमारी आत्मा में भरे हुए पास्ट के प्रिंट्स हैं, अपने आप हल्के होने लगते हैं। ये बहुत अच्छा एक अभ्यास है। ऐसे ही बहुत सारी दुआएं, बद्दुआएं, बद्दुआएं भी मन में बहुत व्यर्थ पैदा करती हैं, ये किसी ने नहीं बताया। हम जीवन में दुआओं का स्टॉक जमा करें। भोजन, भोजन यदि हमारा शुद्ध नहीं है तो मन कभी भी शांत रह ही नहीं सकता। तो अब सोचना है कि हम भोजन को कैसे शुद्ध बनाएं। घर गृहस्थ में रहते हमारे घर में कलह क्लेश भी ना हो और भोजन की शुद्धि भी हो। धीरे धीरे ऐसी कौन सी युक्ति निकालें। तो हमें इसके साथ पुरुषार्थ को जोड़ते जाना है। तो ये हमारे जीवन में एक गहरा और तीव्र परिवर्तन लाएगा। तो आगे करेंगे ये सब, जरूर ये सब आगे करेंगे। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के पूरा करते हैं। ओम शांति।